डॉक्टर ने जैसे ही अरुणिमा से कहा कि वो प्रेग्नेंट है, अरुणिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी जगह पर ही स्थिर हो जाती हैं, जबकि मीरा दूसरी तरफ ऐसे कूद कूद कर नाच रही थी जैसे कि अरुणिमा नहीं बल्कि वो खुद चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई हो। अरुणिमा अभी भी अपनी जगह पर किसी पत्थर की तरह बैठी हुई थी। आखिरी बार जब उसका मिसकैरेज हुआ था और उसने अपने जुड़वां बच्चों को खो दिया था, तब उसने सोचा भी नहीं था कि उसे फिर से ये खुशी महसूस होगी और वो दोबारा इस एहसास को जी पाएगी। माँ बनने का एहसास एक बार फिर से उसके दिल को गुदगुदा रहा था, लेकिन पिछली बार जो डर उसके दिल में था वो अब फिर से उसके ऊपर हावी हो गया था। मीरा उसके साथ खुश हो ही रही थी और उसकी खुशी को महसूस कर ही रही थी कि अचानक उनके कानों में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वे दोनों चौंककर पीछे देखती हैं और जब अरुणिमा ने अपने सामने आस्तिक को देखा तो उसकी हैरानी और भी बढ़ जाती है। दरअसल जब अरुणिमा हॉस्पिटल आ रही थी तो उसने ही आस्तिक को मैसेज किया था कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हालांकि घबराने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मीरा उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रही थी। आस्तिक बहुत ज़्यादा डर गया था। अरुणिमा के लिए वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल की और हॉस्पिटल आ गया। वो सीधे डॉक्टर के केबिन में आ गया बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। जैसे ही उसने दरवाजे पर पहला कदम रखा, उसने डॉक्टर की वो बात सुनी जो अरुणिमा से कह रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही उसके हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया और वो एकदम से अरुणिमा को देखने लगा। अरुणिमा हैरत से आस्तिक को देखती हुई खड़ी हो गई। उसकी आंखें सिर्फ आस्तिक की निगाहों में टिकी हुई थीं और उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं था, लेकिन एक डर जो अरुणिमा के चेहरे पर नजर आ रहा था उसे आस्तिक ने महसूस कर लिया था, और वही डर शायद आस्तिक के दिल के किसी कोने में भी था। आखिर ये डर होना लाजमी भी था। इन दोनों ने अपने पहले बच्चों को खो दिया था और उसके बाद अरुणिमा की मेडिकल कंडीशंस ने ये कह दिया था कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। पर इन सब के बावजूद भी अरुणिमा फिर से माँ बनने वाली थी, लेकिन वो डर, वो एहसास जो इन दोनों की नज़रों में था, शायद ये दोनों ही समझ सकते थे कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आस्तिक आगे आता है और अरुणिमा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें लाल थीं, शायद वो रोने वाला था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोक लिया था। पूरे जीवन में आस्तिक सिर्फ दो बार रोया था, एक बार जब उसने अपने बच्चों को मिट्टी तले दफनाया था और दूसरी बार जब उसने अरुणिमा के लिए डिवोर्स पेपर पर साइन किया था। अरुणिमा ने आज भी आस्तिक की लाल आंखों को पहचान लिया था। उसने अपने आंसुओं को रोके रखा है, ये बात अरुणिमा समझ चुकी थी और इसी ने उसे और ज्यादा परेशान कर दिया था। आस्तिक अरुणिमा के पास आया और उसने धीरे से एक हाथ से अरुणिमा को अपनी बाहों में ले लिया। उसके सिर को सहलाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस। अरुणिमा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और आस्तिक के सीने से लग गई। मीरा उन दोनों को मुस्कुराकर देख रही थी। दिव्यांश के जन्मदिन के बाद आस्तिक अरुणिमा को लेकर अपने घर आ गया था, ग्रीन माउंटेन का उनका आशियाना, जहां अब अरुणिमा की ऐसी सेवा हो रही थी जैसे वो किसी महारानी हो। आस्तिक ने सारा काम घर पर शिफ्ट कर लिया था और अरुणिमा के बिजनेस को भी अपने बिजनेस के साथ मर्ज कर दिया था। आस्तिक अरुणिमा को बेड से नीचे कदम भी नहीं रखने देता था। पहली बार जो गलती उसने की थी अरुणिमा को अकेला छोड़ने की, अब वो गलती गलती से भी नहीं दोहरा रहा था। यहाँ तक कि उसने हर जगह कैमरे लगवा दिए थे। वॉशरूम में भी आस्तिक अरुणिमा पर नज़र रखता था। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। अरुणिमा का सेकेंड सेमेस्टर टेस्ट होना था, लेकिन इन दिनों आस्तिक अपने ही घर में इधर उधर टहलता रहता था, क्योंकि जैसे जैसे अरुणिमा की प्रेगनेंसी बढ़ रही थी उसके हॉर्मोन्स बदल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी और नखरेली होती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि आस्तिक को उसके नखरों से कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन जिस तरीके से अरुणिमा बिहेव कर रही थी आस्तिक हैरान था। रात के 1 बजे थे, आस्तिक आराम से बेड पर फैल कर सो रहा था, जबकि अरुणिमा बेचैनी से इधर उधर करवटें बदल रही थी। उसका पेट हल्का बाहर निकल आया था। 4 महीने की प्रेगनेंसी में ही उसकी हालत खराब हो रही थी। अब आस्तिक उसे कुछ करने नहीं देता था, जिसकी वजह से वो बैठे बैठे और ज्यादा आलसी हो गई थी। उसे इस वक्त नींद नहीं आ रही थी और आस्तिक को सोते हुए देखकर उसे और गुस्सा आ गया। उसने आस्तिक को एक जोर का धक्का मारा, जिससे आस्तिक संभल नहीं पाया और नीचे जमीन पर गिर गया। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठा और जल्दी से अरुणिमा से कहा, क्या हुआ, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? बेबी आने वाला है क्या? मैं डॉक्टर को फोन करूं? गाड़ी निकालूं? तुम्हारी मम्मी को फोन करूं? अरुणिमा ने गुस्से में मुंह बनाते हुए बोला, किसी को फोन नहीं करना है, अभी बच्चा नहीं आया है, बच्चे के आने में अभी टाइम है, तुम सो क्यों रहे हो? आस्तिक एकदम से अरुणिमा को देखकर हैरान हो गया। उसने चौंकते हुए कहा, व्हाट यू मीन कि मैं सो क्यों रहा हूँ? रात हो रही है, सारा दिन ऑफिस का काम, अपना बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस और साथ में तुम्हारी मूड स्विंग संभालता हूँ, इंसान हूँ, थक जाता हूँ। अरुणिमा ने अपना होंठ बाहर निकालते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुला लिया और आस्तिक को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगी। आस्तिक ने गहरी सांस छोड़ी और अरुणिमा के सामने बैठ गया। उसने अरुणिमा के बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं गलती से सो गया था, आज के बाद नहीं सोऊंगा, तुम जो कहोगी वो करूंगी, बताओ क्या हुआ,
क्यों परेशान हो रही हो? मुझे क्रेविंग हो रही है, अरुणिमा ने मासूमियत से कहा। तो आस्तिक मुस्कुरा उठा। जब से अरुणिमा की मॉर्निंग सिकनेस शुरू हुई थी, उसकी क्रेविंग भी बढ़ती जा रही थी और वो कभी भी कुछ ऐसा खाने की डिमांड करती जो आस्तिक के लिए भी मुश्किल हो जाता। लेकिन मुश्किल ही होता, नामुमकिन नहीं। अपनी मलिका के लिए आस्तिक हर नामुमकिन कोशिश को मुमकिन कर देता था। अब तक अरुणिमा ने जितनी चीज़ों की डिमांड की थी, आस्तिक ने उन सारे सामान से किचन भर दिया था। लेकिन एक बार खाने के बाद अरुणिमा दोबारा वही चीज़ मांगती ही नहीं। अगली बार उसकी क्रेविंग किसी और चीज़ के लिए होती। आस्तिक हार मान गया। उसने थकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, क्या खाना है तुम्हें? मोमोज, चाइनीज, फ्रेंच फ्राइज, इटालियन, जो भी खाना है किचन में सब है। तुम गोलो, मैं अभी बना कर लाता हूँ। मुझे डार्क चॉकलेट आइसक्रीम खानी है। अरुणिमा ने जैसे ही ये कहा, आस्तिक की आंखें एकदम बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोला, रात के 1 बजे तुम्हें आइसक्रीम खानी है? अरुणिमा ने मासूमियत से सिर हिलाया। आस्तिक ने अपना माथा पीट लिया और बोला, अरुणिमा यार कुछ और खा लो ना, घर में इतना सारा सामान पड़ा है लेकिन बस एक आइसक्रीम बनाने का सामान ही नहीं है। अगर होता तो मैं तुम्हारे लिए खुद बना देता। इतनी रात को मैं कहाँ से आइसक्रीम लेकर आऊँ? अभी तो कोई डिलीवरी भी नहीं देगा। अरुणिमा ने तुरंत झुंझलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी करूंगी, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है, तुम्हें मेरी भी परवाह नहीं है। मैं कल ही मम्मी के पास चली जाती हूँ, वहाँ मेरी अच्छे से देखभाल हो जाएगी और मैं जो चाहूंगी वो मुझे खाने के लिए भी देंगे। ऐसा कहकर अरुणिमा नाराज बीवी की तरह दूसरी तरफ उतरने ही वाली थी कि आस्तिक ने उसे रोक लिया और बोला, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, चलो ले चलता हूँ तुम्हें आइसक्रीम खिलाने। अरुणिमा मुस्कुरा उठी। उसने जल्दी से सिर हिलाया। उसने इस समय नॉर्मल सी शर्ट और ट्राउजर पहन रखे थे, बाल ऊपर बंधे हुए थे और हाथों में एक टेडी बेयर था। वो बीवी कम बच्ची ज्यादा लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक ने हाफ स्लीव की शर्ट और नीचे हाफ पैंट पहन रखी थी।
आस्तिक अरुणिमा को लेकर घर के बाहर आता है। उसने अरुणिमा को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो ड्राइव करते हुए अरुणिमा को लेकर जा रहा था। सच में अरुणिमा इस वक्त एक छोटी सी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी और आस्तिक उसके हर नखरे बहुत शांति से उठा रहा था। वो उसे लेकर उस मॉल में पहुंचा जो रात के समय भी खुला रहता था और जिसका आइसक्रीम पार्लर आस्तिक ने खुद खुलवाया था।